नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहूम नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है नीनवे नगर का नाश। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से अपने प्रियों के साथ परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से नहूम नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारे लिए इस पुस्तक से यह अंतिम अध्ययन होगा। लेकिन पिछले अध्ययन में जैसा कि हमने देखा है कि नहूम अश्शूर नगर के नाश के बारे में कहता है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के अध्ययन को कर सकें। आज जब हम आपके वचन में सीखना चाहते हैं, वचन में से मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, जो इस समय अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे आपके वचन के सुनने का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, आज के वचन से हम सबों को आशीषित करें जो इस समय निराश, परेशान, चिंता और तनाव में हैं। आप उनकी भी सुधि लें, उनके जीवन से आप बोले और बातचीत करें, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें छुटकारा दें ताकि प्रभु आपके प्रेम में और आगे बढ़ने पाएं। आज के वचन के द्वारा हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर अश्शूर नगरी पर हाय कहता है क्योंकि उन्होंने सबके साथ विश्वासघात किया था और उनके पास लूट का धन इतना था कि वे मानवता को भूल चुके थे। वे निर्दयता में किसी जानवर से भी बदतर थे। वे जानते थे कि परमेश्वर उनसे क्या कहता है, परंतु वे परमेश्वर को तुच्छ समझने लगे थे और जादू टोना भी करने लगे थे। उन्हें अपने गढ़ वाले नगर नीनवे और अपने सैन्य बल पर पूरा भरोसा था। वे सोचते थे कि वे अजय हैं, अमर हैं, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं उनके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उनके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे वस्त्र उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और नहूम की पुस्तक 3 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। परमेश्वर नीनवे के लिए नहूम के मुख से कहता है, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे विश्व के समक्ष नंगा कर दूंगा और उन्हें तेरे सच्चाई दिखाऊंगा कि तू क्या है। इस महान सभ्यता को जब पुरातत्व विभाग के खुदाई करने वाले ने उभारा, तब पता चला कि यह सब वास्तव में था। नहुम की पुस्तक एक जीवित भविष्यवाणी है जो इन सब घटनाओं के घटने से वर्षों पूर्व दी गई है। यह वास्तव में एक आश्चर्य की बात है। मेरे मित्रों, मैं इन बातों को हल्का समझकर आगे बढ़ जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह सब आज के संदर्भ में अति अर्थपूर्ण है, वरन आज का एक अति उचित चित्रण है। नहुम की पुस्तक संसार के साथ परमेश्वर के व्यवहार की विधि को प्रकट करती है। मेरे विचार में तो परमेश्वर ने अपनी विधियां बदली नहीं है, और यदि यह सच है तो हम सब के लिए संकट है। जी हां, घोर संकट में हम हैं। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर कहता है कि वह नगर एक वेश्या था और वह उसकी लज्जा, गंदगी और निस्सारता पर से पर्दा उठा देगा तथा उसे संसार के ठट्ठे के लिए एक दर्शनीय स्थान बना देगा। उस महान असुर राज्य का अंत ऐसा ही हुआ। नहुम के पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे, निनवे नष्ट हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे, हम उसके लिए शांति देने वाला कहां से ढूंढकर ले आएं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि वह उनके लिए विलाप करने वाले कहां से लाएगा, उसके लिए कोई नहीं रोएगा, कोई विलाप करने वाला नहीं है, कोई विलाप नहीं करेगा। यह एक अत्यधिक दुखद अवस्था है। मुझे एक बार एक वृद्ध पुरुष के दफन के समय बुलाया गया था। वह अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण और उसके स्वास्थ्य के कारण यहाँ पर आया था। उसकी पत्नी के मरणोपरांत वह भी बीमार होकर पलंग पर पड़ गया और लोग उसे भूल गए। जब मैं उसके दफन क्रिया में गया हुआ था, तब वहाँ कोई नहीं था। मेरे लिए वह एक अति दुखद घटना थी। मैंने कब्रिस्तान के अधिकारी से कहा कि वह अपने ही कर्मियों को वहां ले आए कि हम वहां पर उसके दफन क्रिया का संस्कार पूरा कर सकें। अतः वह लगभग 12 जन ले आए। लोग उपस्थित हुए और तब बाइबल का पाठ हुआ, संदेश सुनाया गया। और यह कहना आसान है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा और हमारी धार्मिकता के लिए फिर जी उठा, परंतु किसी के दफन में कोई ना हो तो बड़ा ही दुखदाई होता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि निनवे के दफन में कोई नहीं होगा। नहुम कहता है कि उनके विनाश के समय संपूर्ण संसार आनंद मनाएगा, और ऐसा ही हुआ। जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, तब विश्वास बिना उसकी बात कोई नहीं मान सकता था, परंतु इतिहास से प्रकट है कि परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। नहुम की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 पद में आगे लिखा है, क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और महानद उसके लिए किला और शहरपनाह का काम देता था। लिखा है, क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर नहीं है? क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है? नहीं, अमोन मिस्र देश की महान राजधानी था। डॉक्टर चार्ल्स फेनबर्ग अमोन नगर का वर्णन इस प्रकार से करते हैं, वह नगर 18वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान फिरौन राजाओं की राजधानी थी। उनकी वस्तुकला ऐसी थी कि यूनानी और रोमी भी उसकी प्रशंसा करते थे। यूनानी उसे दियोपोलिस कहते थे, क्योंकि वह उनके देवता जुपिटर के समरूप देवता के उपासक थे। वह नगर नील नदी के दोनों तीरों पर अर्थात किनारों पर बसा था, पूर्वी तट पर कर्नक और लक्सर के प्रसिद्ध मंदिर थे, जिसके बारे में होमर ने लिखा है कि उसके 100 द्वार थे। उसके खंडहर 27 मील के क्षेत्रफल में थे। मिस्रियों का देवता अमोन मानवीय देह और भेड़ का सिर लिए हुए था। इससे अभक्त मूर्ति पूजक नगर के विनाश की भविष्यवाणी यर्मिया नबी की पुस्तक 46 अध्याय उसके 25 पद और यहेजकेल नबी की पुस्तक 30 अध्याय उसके 14 से 16 पद में की गई है। अमोन नगर नील नदी के छत्र छाया में उसकी नहरों के मध्य स्थित था। नील नदी में जब बाढ़ आती थी तब वह समुद्र के समान दिखती थी और यह दृश्य प्रति वर्ष दिखाई देता था। मेरे मित्रों, नीनवे अमोन में अपना भविष्य देख सकता था क्योंकि वह मिस्र की राजधानी से उत्तम कभी नहीं था। परमेश्वर नीनवे वासियों से कह रहा था कि अमोन नगर उनके लिए एक उदाहरण है। उसी ने तो उस अजय नगर को उजाड़ा था। उनके विनाश में भी परमेश्वर का हाथ था, चाहे अश्शूर ने उसे ध्वंस किया। और अब परमेश्वर कहता है कि नीनवे को भी वह उजाड़ देगा और यह उसकी समझ में एक उचित कार्य होगा। आज भी परमेश्वर की शासन पद्धति मनुष्य की शासन पद्धति पर प्रबल है। लिखा है, क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थी। ध्यान दीजिए, नहरों अर्थात बहुत जल। बाढ़ के समय नील नदी समुद्र के जैसे दिखती थी, उसके चारों ओर जल था और महानद उसके लिए किला और शहरपनाह का काम देता था। अमोन नगर ऐसा बना था कि बाद में वहां पानी नहीं आता था, वरन उसके लिए किला था। वे सुरक्षित थे परंतु नाश हो गया। नहुम 3 अध्याय के 9 पद में आगे हम पढ़ते हैं, कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे। अमोन के मित्र राष्ट्र उसके चारों ओर बसे हुए थे। मिस्र की राजधानी वह नगर सोचता था कि उसे कोई भी जीत नहीं सकता, क्योंकि उसकी दो दिशाओं में विशाल रेगिस्तान तथा तीसरी ओर नील नदी और उत्तर दिशा में मित्र राष्ट्र थे। अब कोई वहां कैसे प्रवेश कर सकता था। परंतु अश्शूर वहां घुस गए। इसी प्रकार अश्शूर सोचते थे कि नीनवे अजय है, अमर है। मेरे मित्रों, हमारी सच्ची सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर है। हमें उसे स्वीकार करना है। हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, परंतु हमारी भाषा सुनने योग्य नहीं है। यह कैसा दिखावा है। नहुम 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। अश्शूरों ने अमोन की यही दुर्दशा की थी और अब उनकी खुद की बारी है। गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस लिखता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। नहुम 3 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। अश्शूर शराब पीकर साहस बढ़ाना चाहेंगे, परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। नहुम 3 अध्याय के 12 पद में आगे कहता है, तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हों, यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। यदि आप किसी फल से लदे पेड़ को हिलाएं, तो आपके ऊपर पके फल टपकने लगेंगे। नहुम नीनवे के लिए भी यही उपमा देता है। उनकी सुरक्षा बैरी के आने पर ऐसे ही बिखर जाएगी। नहुम आगे कहता है 3:13 में, देख तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं, और रुकावट की छड़ें आग का कौर हो गई हैं। मेरे विचार में उसके कहने का अभिप्राय है कि पुरुष स्त्रियों के समान हो जाएंगे, या यह भी हो सकता है कि वहां स्त्रियों की बात चलती थी। मेरा अपना विचार है कि हमारी आज की महिला मुक्ति परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं। मैं अब भी यही कहता हूं कि स्त्रियों का स्थान घर में है। कलीसिया में स्त्रियों को पदभार दिया जाता है। मेरे विचार में यह उचित नहीं है। स्त्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संडे स्कूल पढ़ाने की अपेक्षा अपने घर को संभालें और बच्चों का पालन पोषण करें। यदि पति मर गया है या काम करने के योग्य नहीं है, तो स्त्री काम करे, अन्यथा वह घर में रहे। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, परंतु सभ्यताओं के पतन का कारण एक यह भी है कि हम बाहर और बाहर होते चले जा रहे हैं। नहुम आगे कहता है 3:14 में, घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा। अंत समय अशूर अपने नगर को दृढ़ करने के लिए ईंटें बनाएंगे। वे पानी गर्म करके शहर पनाह पर ले जाएंगे। वे गर्म पानी दीवार बनवाने वालों के लिए देंगे, दीवार बनाने वाले पर गिरा देंगे, और वह भूमि पर होगा। मेरे मित्रों, यह क्या ही दयनीय स्थिति होगी। नहुम 3:15 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। वह येलेक नामक टिड्डी के समान तुझे निगल जाएगी। यद्यपि तू अरबे नामक टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए। मेरे मित्रों, नहुम की भविष्यवाणी है कि वे सैन्य बल बढ़ाएंगे, परंतु उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। तब वह आगे कहता है 3:16, तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए। टिड्डी चट करके उड़ जाती है। वे बड़े और सफल व्यापारी थे, इस कारण उनका धन संग्रह बढ़ता जा रहा था, परंतु सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज बहुत से व्यापारी अपने धन संचय में लगे हुए हैं, परंतु उन्हें पता नहीं कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन को बचाएं। नहुम कहता है 3:17 में, तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। बुरा समय आने पर अगवे भाग निकलने का प्रयास करने लगे, चाहे कुछ भी समय क्यों ना हो। कहने का अर्थ है, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन वे भागना चाहते हैं। नहुम 3:18 में आगे लिखा है, हे अशूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं, तेरी प्रजा पहाड़ों पर तीतर बीतर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठा नहीं करता। अशूरों के अगुए इतना अधिक आचारहीन हो गए थे कि वे राष्ट्र की अगुवाई करने का प्रयास ही नहीं करते थे। मेरे प्रियो, आप मुझे गलत ना समझें। मैं राजनीति की चर्चा नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि उसने जो भी कहा उसके साथ अशूरों में अगुवाई की कमी के कारण उसका विनाश हुआ। क्या आज हम परमेश्वर की बात सुन रहे हैं? आज की त्रासदी है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है जो शांति का राजकुमार और जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर का अंतिम वचन जो नीनवे के लिए है, यह उसका अंतिम निर्णय है। यह भयानक है और कपा देता है। आइए हम पढ़ते हैं नहुम 3 उसका 19 पद, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। मेरे प्रियो, अशूरों ने पाप किया और बहुत पाप किया था। पाप उनकी जीवन शैली बन गया था। मनुष्य कहता है कि परमेश्वर गलत है, वह बुराई के लिए कुछ नहीं करता है। परमेश्वर उनसे कहता है, मैं इसके लिए अवश्य कुछ करूंगा। आप संसार में इतना अधिक अन्याय देखते तो हैं, परंतु वह निश्चय ही कुछ करेगा। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वह तो नीनवे के सत्यानाश में भी प्रेमी परमेश्वर ही था। नीनवे का नामो निशान मिट गया और परमेश्वर ने उसका दोष अपने ऊपर लिया। उसी ने उन्हें दंड दिया था। मेरे मित्रों, यहां पर हम इस पुस्तक के अंतिम भाग में पहुंच करके देख रहे हैं कि परमेश्वर ने नीनवे नगर को नाश किया, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वह नाश करना चाहता था, परंतु इस कारण से कि वह नगर बहुत ही निर्दयी हो गया था और पार्श्विक हो गया था। वह मनुष्य को कुछ भी नहीं समझता था। वह परमेश्वर का डर नहीं मानता था, और यही कारण है कि परमेश्वर को उसे नाश करना पड़ा, नगर को नाश करना पड़ा। मेरे मित्रों, आज हमारे जीवन के लिए भी यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है नहुम की पुस्तक के द्वारा, कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय माने, अपने जीवन में उन कार्यों को करना छोड़ दें जो उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों को देखता है और उसका एक समय है और वह उसका न्याय करेगा। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस नगर के विनाश के द्वारा आपने अपने जीवन में सबक ले लिया है। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन को प्रभु की ओर लौटा लाएं, उसको अपने जीवन में कार्य करने दें। परमेश्वर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त हुआ, और मुझे आशा है कि आपने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम सब फिर मिलेंगे और एक नई पुस्तक के साथ। कृपया अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि हम सब मिलकर फिर से एक नई पुस्तक का अध्ययन कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। 9821001018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी प्रभु जी।